ओम शांति। संडे की मुरली ही किसपे चली थी? गीत से तो याद आ गया होगा, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा कमल खिला पुष्प खिला, पुष्प खिला। जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है, ठीक है। अगर जीवन में कष्ट है, अगर मन दुखी रहता है, अगर अशांति है, तो कहीं ना कहीं क्या है, माताएं बोलेंगी, इसलिए थोड़ा ही आपको आगे बुलाया, तो कहीं ना कहीं अपवित्रता है। हमें बहुत खुश भी रहना है और जीवन को शांति से भरपूर भी करना है। मुझे आज अभी टॉपिक याद आ रहा था कि हम इसी पे चर्चा कर लें, जो बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि अभी अभी कनाडा की एक माता का फोन आया, उसके शब्द सुनो आप। मेरा 27 साल का लड़का और उसकी पत्नी दोनों ही अति शराब पीते हैं, थोड़ी बहुत नहीं, सारी सारी रात। अरे इधर बैठ जाओ ना माता जी, क्यों भीड़ में बैठी, इधर आओ। सारी सारी रात कहा, मेरे पति को भी बहुत शराब की आदत थी, मैंने कमा कमा कर उसको शराब पिलाई, तंग हो गई, निकाला घर से उसको। अभी ये दोनों आ गए हैं, तो क्या भगवान ने मेरा भाग्य ऐसा ही लिखा है? मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मैंने कैसे लिख दिया ऐसा भाग्य कि मेरा बच्चा पति सब शराब पिए? ज्ञान नहीं है उसको, कनाडा का फोन था, क्या करूं? शराब क्या कर रही है जीवन को खराब। इवन बड़े बड़े डॉक्टर्स शिकायत थी, ये नीचे कंप्लेंट हो रही थी, डॉक्टर शराब पीते हैं और वो जो मल के खाते हैं ना हाथ पे, क्या कहते हैं उसे, वो बहुत खाते हैं। ये संसार की सृष्टि चक्र का अंतिम समय आ पहुंचा है, जबकि मनुष्य में मनुष्यत्व भी समाप्त, देवत्व तो छोड़ो, और संपूर्ण रूप से आसुरीयता की वृद्धि हो गई है, और कोई भी मनुष्य इसको रियलाइज नहीं कर रहा है कि ये गलत है। कहीं तो ये कहते हैं बनी पीने के लिए है, इसे किडनी खराब होती है, लीवर खराब होते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक होते हैं, सब बिगड़ जाता है, किसी का ब्रेन खराब हो जाता है। तो बाबा ने हम सभी को कितना अच्छा जीवन दिया है, दिया है। खुश हैं सभी माताएं अपने जीवन से? पीछे वाली माताएं खुश हैं? खुश हो तो हाथ तो उठा दो जरा, खुश हैं? या बच्चे तंग करते हैं? इन्होंने नहीं उठाया, बच्चे तंग करते हैं? खुश हैं या बच्चे तंग करते हैं? ये भी बहुत समस्याएं आजकल। हम तो ठीक हैं, पर बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्या करें? तो घर घर में जैसे अशांति है पवित्रता की कमी के कारण, पवित्रता की कमी होती है तो मनुष्य में क्रोध भी आता है, वो इरिटेट भी होता है, उसकी कामनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं दूसरों से। जिन वासनाओं को मनुष्य प्यार समझता है, वो प्यार नहीं है, प्यार से बहुत दूर ले जाने वाली शत्रुता है वो मनुष्य के अंदर। इसलिए बाबा का हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ, उसने न केवल मार्ग दिखाया लेकिन पवित्र बनाकर सुख से जीने की राह बता दी। तो हमें खुश रहना है। कल की मुरली बहुत सुंदर थी। सवेरे बाबा हरेक का चार्ट चेक कर रहे थे, सब जगह पहुंच गए थे। सहज है बाबा के लिए पहुंचना, चार्ट भी फटाफट आ जाता है सामने, जैसे आजकल कंप्यूटर में आ जाते हैं ना, फटाफट हरेक का सब कुछ बाबा के सामने आ जाता है। तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते चलें। तो आज हम चर्चा करेंगे खुशी सदा कायम कैसे रहे। चाहते हैं खुश रहना या नहीं? चाहता तो हर व्यक्ति है, परंतु कौन सी चीजें हैं जो खुशी के लिए घातक हैं, और हम उस जगह क्या अपनाएं जो खुशी कायम रहे, इस पे चर्चा करते हैं। बोलेंगे सबको अनुभव है कौन सी चीजें खुशी को नष्ट करती हैं? हैं? हाँ नहीं, पहले चीजें, अपवित्रता तो है ही, और हैं? क्या बोला? एक बोले ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, चर्चा फिर करेंगे। दूसरा निगेटिव चिंतन। तीसरा हाँ कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस अंग्रेजी में वही है। बोलो तीसरा व्यर्थ, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ विचार, और बोलो सबको पता है हैं? एंजाइटी, बहुत सारी चिंताएं, और बोलो संस्कारों में टकराव, क्रोध, 100 चीजें हैं कम से कम, सब एक एक उत्तर दे सकते हैं। मैंपन, व्यर्थ की इच्छाएं, कोई आपको डांट देता है घर में, बाप ने डांट दिया, खुशी गुम। एक कुमार आया अभी से हमको बता रहा था, मेरे बाप ने मुझे बचपन से ही डांटा, मैं सहनशील फिर ज्ञान में आ गया, मैं तो सहन करता रहा, लेकिन वो मेरे छोटे भाई को भी ऐसे ही डांटता है, और वो है बहुत तेज तराक, वो सीधा जवाब देता है। कैसा हो जाता है घर का वातावरण? इसलिए बड़ों को भी, माँ बाप को भी, अपने बच्चों से, खासकर जब वो बड़े हो जाएं, बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अपना मित्र बना लेना चाहिए जो ऐसा नहीं करते। और जो माँ बाप बचपन से अपने बच्चों से दुर्व्यवहार करते हैं, तो उन बच्चों की खुशी भी चली जाती है और एक बदले की भावना। तो वो बताता, छोटा भाई है, वो तो कह रहा है बस मेरी शादी हो जाए, मैं तो यहाँ से गया, इसको बूढ़े को अकेले को रहने देना, लड़ता रहे अपने से ही। कैसी भावना हो जाती है बच्चों की? कई माँ बाप कहते हैं आजकल के बच्चे सम्मान नहीं करते बड़ों का। सम्मान करते नहीं या मनुष्य ने सम्मान स्वयं खोया है? बोलो, माताओं के घरों में भी ये समस्याएं हैं, मनुष्य ने सम्मान स्वयं खोया है। टीचर्स की भी यही बात है, लौकिक टीचर्स सिगरेट पीते रहते हैं क्लास में, कई तो बड़ी क्लासेज के शराब पी के आ जाते हैं क्लासेज में, लड़खड़ाते रहते हैं, कुछ का कुछ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। सम्मान रहेगा बच्चों के मन में? वो उसको गुरु मानेंगे? न कोई प्रेरणा मिलेगी, न उन्हें आनंद आएगा, जहां तहां चर्चा करेंगे, माहौल बिगड़ेगा। लेकिन है कि बुद्धिमान मनुष्य इन चीजों को रियलाइज नहीं कर रहा है। ये समय की बहुत बड़ी मार है कि इस तरह की स्थिति अनेक घरों में बनती जा रही है, और वे घर जिनमें सुख शांति है, वे घर जिनमें बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, कर्मठ हैं, वो तो बहुत भाग्यवान हैं। कौन कौन माताएं भाग्यवान हैं? भाई लोग भी हाथ उठा दें, जो मैंने बताया उसके अनुसार। बाबा ने कहा तुम बहुत भाग्यवान हो, ये तो है, लेकिन जिनके परिवार अच्छे हैं, जिनको परिवार से कोई परेशानी नहीं, निश्चिंत किया हुआ बच्चों ने। ऐसी भी कई माताएं और पिताएं हैं जिनके बच्चों ने उनको निश्चिंत कर दिया, वो ज्ञान में भी नहीं चलते लेकिन कहते हैं आप चलो, आप इस ईश्वरीय मार्ग पे चलो, हमारी ओर से आप निश्चिंत, न अपनी चिंता उन्हें दी न कुछ डांट डपट बुरा व्यवहार रहता है। तो हमें अपनी खुशी को कायम रखना है, टकराव से बचना है। पहले मैं टकराव की बात ले लेता हूँ। जहाँ दो व्यक्ति भी रहते हैं आजकल, वहाँ भी टकराव बहुत चलता रहता है परिवारों में। बहुत ही केस हो गए हैं पति पत्नी के बीच में जो युवक है ना, बन नहीं रही है। एक और माता आई मेरे पास अभी शाम को ही, मेरी लड़के की पत्नी छोड़ के चली गई है। मैंने कहा क्यों चली गई? छोटी आयु। कहा लड़का बहुत शराब पीता है। तो मैंने कहा वो तो जाएगी ना, क्या उसने तो अच्छा किया, पर मैं क्या करूं? अब लड़का क्या कहता है, अब ये लड़का कमाता नहीं तो इसकी युगल ये पढ़ी लिखी है ट्यूशन पढ़ाती है। तो लड़का कहता है ट्यूशन पढ़ने बड़े बड़े लड़के आते हैं, ट्यूशन न पढ़ाओ तो मैं शराब छोड़ूं। अब वो कहती है पहले शराब छोड़ो फिर मैं ट्यूशन छोड़ूं। झगड़ा। ये माता जी पूछ रही क्या करूं, ये आजकल घर घर की कहानी चलती आ रही है। केस तो आज के हैं जो मेरे सामने आए। तो हम सभी टकराव से बचें और माताएं विशेष रूप से अपने घरों में ऐसा माहौल बनाओ जो कोई ये गंदा भोजन खाए ही नहीं। हो सकता है ऐसा? कौन माताएं समझती हैं कि अपने अपने घरों में ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि वहां ये गंदा भोजन न बने, न कोई शराब पिए, सात्विकता रहे। क्या चाहिए इसके लिए? उत्तर भाई देंगे। घर में योग का माहौल। और यही जो आज का टॉपिक था बाबा की मुरली से, बहुत अच्छी पवित्रता। माताएं कहीं कहीं मोहवश अपने बच्चों को खुद पैसा दे देती हैं, पी लो तुमसे नहीं रहा जाता, पी आओ। मोह अपवित्रता हो गई है भी। ऐसा माहौल तब बनेगा जब सभी बहुत अच्छे स्वमान में रहेंगे। स्वमान से हमारी स्थिति बनती है। सब ये बाबा का महावाक्य याद रखेंगे, लिखा रहता है हमारे यहाँ जहाँ तहाँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं, अब ही बदल जाएंगी। और स्वस्थिति बनती है श्रेष्ठ स्वमान से। तो हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होते चले। कौन से स्वमान रखें? जो घर का माहौल पवित्र रहे और बच्चों के मन में आप माताओं के भाइयों के लिए सम्मान रहे। कौन सा स्वमान याद करेंगे? दो चार सुनाएंगे, भाई सुनाएंगे जो गृहस्थी है ना, गले में माला जिन जिन के, वो सुनो बोलो। मास्टर सर शक्तिवान। और सुनाओ कुछ बोलो। और मैं आपको और चीजों पे ले चलता हूँ। परम पवित्र आत्मा हूँ मैं, एक महान आत्मा हूँ, इसकी गहरी फीलिंग में चलो। स्वमान को अच्छी तरह समझ लें आप। एक है याद कर लेना मैं एक महान आत्मा हूँ। हम भी लोगों को सिखाते हैं लिख दो 108 बार मैं एक महान आत्मा हूँ। पर इन सबसे ऊंची बात है कि हम स्वीकार कर लें मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं इस घर में कौन हूँ? इष्ट देवी हूँ। ध्यान दे माताओं को मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों से माताएं फिर परेशान बहुत होती हैं। भाई लोगों को क्रोध आदि आएगा, माताएं परेशान हो जाती हैं बहुत ज्यादा। आपका कर्तव्य है अपने घरों में सुंदर माहौल बनाना। समझ ले माताएं बहुत अच्छी। और जिस माता की मैंने कहानी सुनाई उसके लड़के की पत्नी छोड़ के चली गई। मैंने पूछा योग लगाना आता है माता जी आपसे, कितने साल से ज्ञान में हो? आपको आश्चर्य लगेगा, 50 साल से हूँ। जब मैंने कहा अच्छा अभ्यास करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैंने कहा रिपीट करो मैंने क्या कहा, तो माता जी ने कहा मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने कहा फिर तो तुमसे बाबा बन गई। फिर हंसने लगी, अरे नहीं मास्टर हूँ। तो माता जी 50 साल से ज्ञान में तो चल रही हैं, लेकिन योग में नहीं चल रही है। यही पूछते हैं ना सब, ज्ञान में कब से चल रहे हैं? ये कोई नहीं पूछता योग में कब से चल रहे हो, ये भी तो पूछना चाहिए नहीं? तो बहुत ऐसे हैं बाबा के बच्चे जो 50 साल से चलने के बाद भी ये पूछते हैं योग कैसे लगाऊं, मेरा तो लगता नहीं। एक ऐसी माता की कहानी गुजरात की है, 45 साल से ज्ञान में, उसके बच्चों की समस्या मुझे फोन करती रहती है। मैं कहता हूँ माता जी योग तो करो 1 घंटा, भाई जी मेरा तो लगता नहीं। फिर मैं हंसी में कह देता हूँ तो किराए पे रख लो किसी को, आपके लिए वो योग कर दिया करेगा, जैसे भक्ति करा देते ना मंदिरों में जाके, भाई हमारे नाम से पंडित जी पूजा कर देना, 501 रुपए लो। मैंने कहा तुम भी रख लो किसी पंडित को, हमारे नाम से योग कर दो, चलेगा काम? नहीं चलेगा। अब 45 साल हो गए और योग लगता नहीं, तो कब लगेगा, बूढ़े हो गए। इसलिए अपनी स्थिति को ऐसा रखना है। अभी क्यों नहीं योग लगता? क्योंकि व्यर्थ बहुत रहता है, व्यर्थ से आंतरिक शक्तियां नष्ट होती रहती हैं, बुद्धि गंदगी का डिब्बा बन जाता है। जिस बुद्धि में ज्ञान अमृत बसाना चाहिए, जिस बुद्धि में भगवान के वरदान समाने चाहिए, जिस बुद्धि में ईश्वरीय शक्तियां समा सकती हैं, वो गंदगी से भर जाती है। अब सोच लो, सभी अपने से बात करें, मुझे अपनी बुद्धि में ये श्रेष्ठ चीजें समानी है जो कभी नहीं मिलती, वरदान शक्तियां, परमात्म प्रेम, स्वयं भगवान को बैठा देना है इस बुद्धि में, ये श्रेष्ठ है? या ये गंदगी जो मनुष्य ने भर ली है उसका भी कुछ महत्व है? सोचेंगे सभी, उत्तर तो मैं जानता हूं आप क्या देंगे, लेकिन गंदगी कौन भरता है, कोई और या स्वयं? देखिए ये गंदगी ऐसी है जिसको मनुष्य स्वयं इकट्ठा करता है, स्थूल गंदगी को तो हर मनुष्य साफ कर लेता है। बचपन में सुनते आते थे बड़े लोग कहा करते, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से जा साफ करता है पहले, हम भी देखते थे पूंछ चिल्ला रहा पहले साफ कर रहा है, कुत्ते को भी अकल है कि सफाई से बैठना है। बुद्धि को क्लीन रखना, स्वच्छ, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सभी भाई बहने ध्यान दें, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है जो अपनी बुद्धि में गंदगी न भरे। युवकों के साथ भी ये हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आज मैं फ्री था तो सवेर से मैंने कई बार फोन खोले, ऑन किया अपना, तो 2-3 स्टूडेंट्स के फोन आए, सबकी एक ही समस्या थी, हम बहुत अच्छे थे, होशियार थे, अचानक अब हमें कुछ भी याद नहीं रहता। कहा हमारे लेक्चरर पढ़ाते रहते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसी स्थिति हो गई। तो पहले तो पूछते थे ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, बड़ी सूक्ष्म बात है। मैंने पूछा टीवी कितना देखते हो, कहा बिल्कुल नहीं। मोबाइल कितना सुनते हो, कहा बिल्कुल रखा हुआ, किसी को करना है तो करना है, नहीं तो खाली। इंटरनेट काम से आता ही नहीं। तो पूछते हैं कि आखिर हमारी मेमोरी इतनी कमजोर क्यों हो गई। मैं 10वीं क्लास तक बहुत होशियार स्टूडेंट था, 11वीं 12वीं से थोड़ा डाउन होने लगा और बीए में जब पहुंचा तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब ऊपर से जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? अब सूक्ष्मता से सोचना है आप सभी को, इसका मोटा उत्तर नहीं है। एक तो पिछले जन्मों का, इसको मैं जरा बढ़ाता हूं, और बहने बताएंगे नहीं, कई बच्चों में व्यर्थ भी नहीं है। जैसे ये मैंने कहानी सुना है, वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं कुछ नहीं इधर उधर देखता सुनता कुछ भी नहीं, पर मेरी मेमोरी ऐसी डल होती जा रही है, हैं? हाँ, कंसंट्रेट कर नहीं पा रहे, पर क्यों? नहीं, संग दोष भी इसके साथ नहीं था। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो संग दोष में हैं, कंसंट्रेशन नष्ट हो जाती है, सभी को एक चीज जाननी चाहिए, ये बड़ी गहरी फिलोसफी है, इस पे ध्यान देंगे, जो माताएं सब समझ सकें वो भी समझने की कोशिश करेंगे। गर्भ में जब बच्चे के शरीर का निर्माण होता है तो ब्रेन, दिमाग विशेष रूप से तब विकसित होता है जब आत्मा देह में प्रवेश कर लेती है, लगभग 5 मास में। तो आत्मा की जो क्वालिटी है, उसके जैसे वाइब्रेशंस हैं, उस अनुसार ब्रेन का और शरीर का निर्माण होता है। इस बात को डॉक्टर साहब कोई नहीं जानते, ये बिल्कुल अपनी बात है, हम लोग ही समझ सकते हैं। देह का निर्माण केवल माँ बाप के द्वारा नहीं, उस आत्मा के वाइब्रेशंस के द्वारा भी होता है। आधा इफेक्ट माँ बाप का, तो आधे से ज्यादा इफेक्ट उसके वाइब्रेशंस का। इसलिए कई साधारण घरों में महान आत्माएं पैदा हो गई, कई बहुत महान लोगों के पास एक बुद्धू बच्चे ने जन्म लिया जिसको कुछ नहीं आता। तो हम सब जानते हैं आत्मा की डिग्री कलयुग के अंत में आते आते कितनी रह गई, 100 डिग्री से कितनी रह गई है, बोलो। नहीं, एक तो नहीं, इतना कम तो ना करो, नहीं और थोड़ा आगे बढ़ाओ, 10 से कम कम, 10 से कम कम, कहां 100 डिग्री, हमारी पावर, हमारी प्योरिटी, हमारे वाइब्रेशंस। सतयुग में जब हम थे 100, 100, तो कैसा शरीर मिला होगा, कैसी बुद्धि मिली होगी, सोच लें हम। और भी जो आप में से पढ़े लिखे वो एक बात और सुन लें, सतयुग के पहले जन्म में कुछ किया ही नहीं, अभी हमने पास्ट है ही नहीं हमारा, तो हमारा अंतर मन सबकॉन्शियस माइंड खाली, उसमें कुछ भी नहीं है, कितना सुंदर जीवन होगा वो, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोएंगे तो जब उठेंगे लगेगा नहीं कि हम सोए हैं, ऐसी वो स्थिति है हमारे ब्रेन की। तो अब कलयुग के अंत में, क्योंकि सब आत्माओं की डिग्री, किसी की 5, किसी की 7, किसी की 10, कुछ ऐसी भी है ना जो ऊपर से आ रही हैं अभी अभी, उनकी डिग्री 10 तक होती है। तो गर्भ में मनुष्यों का, बच्चों का ब्रेन ही काफी कमजोर बनता है। और क्या हो रहा है आजकल, आप देख सकते हैं पिछले 20-25 साल में ही बुद्धि पर प्रेशर ज्यादा, दबाव, और बाकी जो बातें हैं वो तो हम जानते ही हैं, कहीं टकराव है, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे, कहीं घरों में अच्छा माहौल नहीं मिल रहा बच्चों को, कहीं उनको संग बुरा मिल गया है, और बाकी ये अपवित्रता, इंटरनेट, टीवी, ये सब तो हैं। लेकिन पढ़ाई का प्रेशर, अब ब्रेन जो है उस प्रेशर को संभाल नहीं सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना? माताओं ने समझा, मैं बिल्कुल सहज भाषा में बताया, कमजोर दिमाग इतने बड़े प्रेशर को संभाल नहीं पाता। एक बहुत बड़े डॉक्टर आज ही मेरे पास आए सवेरे, अपने लड़के को लेकर, यूपी के थे, पर माँ बाप दोनों डॉक्टर, बच्चा सीए कर रहा है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत अच्छी जॉब होती है, इसके बाद लाखों कमाते हैं, लेकिन पहले ही साल के बाद लड़का डिप्रेशन में, लाए थे उसको भी, उसका चेहरा देखकर मोटा होता जाता है, न खाने की इच्छा, न सोने की इच्छा, न टीवी देखने की इच्छा, पढ़ाई का तो प्रश्न ही नहीं, इच्छा ही नहीं, एक ही लड़का, देखो कैसी स्थिति होगी, दोनों के पास पैसा बहुत, तो खुशी कैसे रहे? वो ये भी सोच रहे हम अब कमा किसके लिए रहे, इसका हाल तो बिगड़ता जा रहा। फिर मैंने पूछा आप तो डॉक्टर हो, दोनों अच्छा इलाज कराया होगा। कहा 5 साल से बहुत ज्यादा खर्च हम कर चुके हैं, आखिर डॉक्टरों ने ये बता दिया डिप्रेशन की कोई दवाई होती नहीं। उसने बोला कि डॉक्टर तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं प्रयोग, कि भाई खा के देख लो, लग गया तो तीर, नहीं तो हिंदी में क्या कहते हैं, तुक्का। वो खुद कह रहे हैं डॉक्टर। तो देखिए ऐसी मनोस्थिति बच्चों की, तो घरों का माहौल, फिर मैं वहीं आ रहा हूं, भाई बहनों को सबको कैसा बनाना चाहिए? शब्द आप देंगे, कुमार बताओ, बोलो। नहीं, योग युक्त में तो सब आ गया, थोड़ा इसको खोल दो, टेंशन फ्री, मिलनसार का, हल्के, खुशी का, हंसी खुशी का, सरल, सहयोग का, सम्मान का, प्रेम का, ये होना चाहिए ना। अब ये बहुत कठिन काम है कलयुग के अंत में। एक परिवार में 5 लोग हैं, 4 बहुत अच्छे, 1 तूफानी, सब की शांति भंग, ये बहुत हो रहा है। 8 लोग परिवार में, 7 बहुत अच्छे, 1 से सब परेशान, 7 मिलकर 1 को ठीक नहीं कर पाते, 1 पावरफुल होता है। क्यों क्यों? कई प्रश्नों का उत्तर आएगा इस प्रश्न के साथ। लोग पूछते हैं कलयुग में और सब जगह, तो आप समझिए ना मैं कहाँ कह रहा हूँ, जो तेज तराक लोग हैं वो आगे, और जो जेंटिल लोग हैं, अच्छी स्थिति वाले, वो क्यों है ऐसा? दुनिया में भी और सब जगह भी क्यों, बताओ? इसका उत्तर आपको जानना चाहिए और आपके पास है वो। कलयुग में प्रभाव है ही पाप का, इसलिए पाप का बलदा भारी होने से पाप को ही मान्यता है, पुण्य को नहीं। पापियों का ही महत्व है, ये इसलिए कि कलयुग का अंत है, उसे कोई बदल ही नहीं सकता। तो सभी अपने अपने घरों में खुशी, प्रेम, शांति, सरलता, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, ऐसा माहौल निर्माण करें। क्या योगदान देंगे आप? पहली तो वही बात जो मैंने आपको कही, 2 स्वमान मैंने आपको याद दिलाए थे, मैं एक महान आत्मा हूं और मैं इष्ट देव देवी हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान से वातावरण पावरफुल हो जाएगा, पर इन 2 से क्या होगा कि आपकी स्थिति में महानता आती जाएगी और सारा परिवार आपको सम्मान देगा। और जब दूसरे लोग सम्मान देते हैं तो क्या फायदा होता है? वो बात मानते हैं। जहाँ सम्मान है वहाँ आज्ञा पालन भी है। माँ का बच्चे सम्मान करते हो और माँ कह रही हो आज वहाँ नहीं जाना है, तो बच्चे उस सम्मान में भी नहीं जाएंगे। और सम्मान मिलता है श्रेष्ठ स्वमान से। 2 चीजें बाबा की मुरलियों से हम जानते हैं बड़ी गहरी, प्यार चाहिए तो क्या करें, सम्मान चाहिए तो क्या करें, प्यार चाहिए तो क्या करें, प्यार दें। और कुछ इससे भी पहली बात, जो जितने देहे से न्यारे वो उतने ही सबके प्यारे, और बाबा के प्यारे, ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है ना, ये सीक्रेट हो गया। इसलिए जितने जितने हम देह से न्यारे होते जाएंगे सबको हम प्यारे लगेंगे, छोटी मोटी बात खत्म। और स्वमान में रहेंगे तो बाबा के शब्द हैं, सम्मान परछाई की तरह पीछे चलेगा। सभी इन दोनों चीजों पर ध्यान दें, देह से न्यारापन दिन में बीच बीच में अभ्यास कर लें, इतना ही मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग मैं अलग, इतना ही काफी है। अभ्यास करते करते मोह भी नष्ट होगा, मोह बड़ी प्रिय चीज भी है, मनुष्य छोड़ना भी नहीं चाहता, पर बड़ा कष्टदायी है ना, कष्ट देता है, कर्तव्य को भुला देता है। जो मनुष्य के अपने कर्तव्य हैं, जो उस समय वो कर सकता है, वो विस्मृत हो जाते हैं मोह में और पीड़ा बढ़ जाती है। इसलिए बीच बीच में ये अभ्यास, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूँ, ये देह अलग है। और एक बहुत अच्छा शब्द मैं जो क्लास में सुनाया ही करता हूँ, सभी को रोज एक बार अवश्य याद कर लेना चाहिए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। रोज अपने को जरा 2-3 मिनट, ज्यादा समय की तो जरूरत नहीं, इस दीप चिंतन में दे दें, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए है, और महान कार्य कराने के लिए बाबा ने मुझे अपनी शक्तियां दे दी, धारणाएं दे दी बहुत सारी, और हरेक को कुछ ना कुछ वरदान भी दे दिया है, सब याद रखें। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा इस खुशी के संबंध में, जो माया को जीतने चले हैं, सबने जीता ही है ना बहुत कुछ, ठीक है अभी पूरा नहीं जीता पर बहुत तो जीता है ना, जो माया को जीत रहे हैं वो इस संसार की बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। सीधा सा समझ लें आप, जितना जिसने माया के पांचों विकारों को जीत लिया वो उतने ही शक्तिशाली हैं और उतने ही ज्ञानी हैं, दोनों चीजें। जिनके पास श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, ज्ञानियों के पास श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, वो मैपन में आ जाते हैं, वो ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हैं, वो परचिंतन और टकराव में आ जाते हैं और जीवन की दिव्यता नष्ट हो जाती है। देखिए छोटे विकार हैं परचिंतन, कईयों को तो लगता भी नहीं कि ये भी कोई विकार है क्या, ईर्ष्या द्वेष, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ जाना, पर ये मनोविकार है ना, मन की बुरी स्थिति इनसे बनती है, ये मन की शक्तियों को नष्ट करते हैं। तो जो विकारों को जीत रहे हैं वो सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को भी हमें पहचानना है, और क्यों पहचानना है, ताकि जब छोटी मोटी बातें हमारे पास आए तो हम पावरफुल हों, कि ये बातें, ये विघ्न, ये समस्याएं हमारे सामने कुछ भी नहीं, जैसे हमें एक छोटा सा बैग उठा के चलना हो 5 किलो वजन का, कैसा लगेगा, भारी, या लगेगा कुछ भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसा लगेगा ना जैसे कुछ उठाया ही नहीं है। और 1 किलो का ही हो तो वो तो जेब में ही डाल लेंगे, कई तो माताएं छोटे पर्स में रख लेंगे, वजन ही नहीं। हम अपनी शक्तियों को इतना रियलाइज करें, इसकी स्मृति में रहें, केवल शक्तियां हमारे पास हैं ही, हमें केवल उसकी स्मृति में रहना है, और उसके लिए स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लेकिन ये बात आप सभी जान लें और स्वीकार कर लें कि हम सभी बाबा के बच्चे, सब जिन्होंने माया को जीतने का सोचा भी है ना, नए आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि भगवान की आज्ञा है इस माया को, काम क्रोध को जीतना है, वो भी शक्तिशाली हैं। और जो इनके वश होते जा रहे हैं वो अति निर्बल हैं, और ये माया निर्बल और ज्यादा बना रही है। तो हमें इच्छा छोटी माया से बचना है। अगर हम व्यर्थ में ज्यादा रहते हैं, उत्तर दिया ऐसा, व्यर्थ संकल्प खुशी को नष्ट करते हैं। एक तो खुशी को नष्ट करते हैं व्यर्थ संकल्प, दूसरा क्या होता है कि व्यर्थ संकल्पों से हमारा विवेक भी निर्बल होता है और हमारी शक्तियां भी नष्ट होती रहती हैं। तो जब छोटी मोटी बातें सामने आती हैं तुरंत खुशी नष्ट हो जाती है। इसलिए सभी अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएंगे, सभी ध्यान से सुन लें, कुमार भी अदर कुमार माताएं कन्याएं सब ये आदत डालेंगे कोई भी बात हो जाए उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना। गौर करें इस बात पे, कईयों की नेचर होती है, छोटों की भी नेचर होती है, एक बात को ऐसा पकड़ लेते हैं बच्चे रूस जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, उन्हें मनाते रहो, मानेंगे नहीं, माताओं का अनुभव है ना खूब, इससे बचना है। अब हम सब बड़े हैं, समझदार हैं, सिद्धारणा अपना लें कि बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करें, तो बहुत कुछ प्राप्तियां हमारे द्वार पर आती रहेंगी, वरदान हमें प्राप्त होते रहेंगे। अगर व्यक्ति बातों में रहेगा तो बहुत सारी ईश्वरीय चीजें, खजाने उसको मिलेंगे ही नहीं। जैसे भगवान बांट रहा है, वो ले भी रहे हैं पर उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमान वही हैं जो इस संगम युग पर व्यर्थ से अपने को मुक्त रखें। व्यर्थ का विस्तार बहुत लंबा छोड़ा है, अगर हम एकाग्रता पे चर्चा करें तो कम से कम 10 क्लास हो जाए। लंबा चौड़ा विस्तार है व्यर्थ का, जो मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट करता है। लेकिन हम ध्यान दें बस कि भगवान की आज्ञा है, तुम्हें व्यर्थ से मुक्त रहना है। तुम यहाँ बाबा के पास पर चिंतन के लिए नहीं आए हो, मुश्किल से तो भगवान मिला, मुश्किल से तो उसका सुख मिलने लगा, और हम इन छोटी बातों के कारण उस सुख को छोड़ दें? नहीं, सब अपने से बातें करो। पसंद है ये बातें करना? सब करो। जो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं उनका योग अच्छा लगता है, उनकी धारणाएं अच्छी होती हैं, वो वरदानों को धारण कर सकते हैं। देखिए वरदान बाबा सबको दे रहा है, और हम में से बहुतों को कम से कम एक वरदान प्राप्त है, कम से कम एक, ज्यादा भी। लेकिन बाबा के ये महावाक्य याद रखेंगे, वरदानों को धारण करने की शक्ति बुद्धि में तभी आती है जब हम लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं, वरदान मिल रहे हैं। देखो अव्यक्त बाप दादा पिछले 2-3 सालों में तो सीधा ही वरदान देते हैं, दुआएं जैसे देते हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुखी भव। कई लोग सोचते हैं भगवान ने कह दिया और हम सुखी हो जाएंगे क्या, उसने तो कहा हम तो हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए? इस वरदान को वही बुद्धि धारण करेगी जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में है। इसलिए सभी अपने को रोज चिंतन के लिए थोड़ा समय दें। अब तो कल्याणकारी चांस मिला है ना सबको, कौन सा, सड़क टूट गई, नहीं तो वैसे नीचे की पार्टी बहुत आती थी, खाना खाने, चाय पीने, घूमने, तो बिजी तो रहते हैं, उससे भी माहौल में खुशी रहती है, आनंद आता है। हम तो यान सरोवर में रहे तो मैं तो बहुत कम रहा, एक दिन बीच में रहा, आज आया तो जैसे मजा नहीं आता। हम लोगों को आदत पड़ गई ना, खूब सेवा हो, देवकुल की आत्माएं घूमती फिरती नजर आती हैं, रिमझिम रहती है ना अपने यहाँ, तो एक सुंदर चांस मिला है, इसका फायदा उठाएंगे सभी। मैंने आपको कहा, ध्यान दिया अपने माताओं ने, आधा घंटा रोज एकांत में स्वयं से बातें करें। मैंने कई बातें आपको बात करने की सुना दी, क्यों हमें ये जीवन मिला है, बाबा के श्रेष्ठ मार्ग पर आए हैं, हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है, ताकि हमें उस माता की तरह कहना न पड़े कि भगवान ने मेरा ऐसा भाग्य क्यों लिखा। हमें आनंद रहे, हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और ये सभी सूक्ष्म रहस्य को याद रखेंगे, अगर हमें ये याद रहता है, विशेषकर सवेरे के समय, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, तो क्या फायदा होगा, बोलो सीधा फायदा, लाभकारी फायदा। नहीं खुशी तो मिलेगी ही, इतना ही नहीं। चलो भाई उत्तर दे, हमारे भाग्य का श्रेष्ठ निर्माण होता रहेगा, ये भी सीक्रेट है, रहस्य है। इसलिए जितने सुंदर संकल्प हमारे होते हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, खुशी बढ़ती जाएगी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्य बढ़ता जाएगा। मैं बहुत सुखी हूँ, सुख बढ़ता जाएगा। तो सभी अपने लिए रोज एकांत का आधा घंटा अवश्य दें, इस तरह के चिंतन के द्वारा अपनी सोई हुई चेतना को जगाया करें। हम सबको रोज अपने को जगाने की जरूरत है। हम जाग गए हैं, लेकिन हमें रोज जगाना है, स्मृति दिलानी है, हम पूर्वज हैं। बाबा के अच्छे अच्छे महावाक्य याद करो, दो चार सुना देता हूँ। हम पूर्वज हैं, भगवान ने आदेश दिया है तुम्हें संसार की पालना करनी है। मुझे वो शब्द बाबा के बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की वैसे ही तुम औरों की पालना करो, याद आएगा। तुम्हारी सकास की संसार को बहुत बहुत जरूरत है, याद आएगा। कितना बड़ा कर्तव्य हम कर सकते हैं, कितने बड़े पुण्य जमा कर सकते हैं, कितना बड़ा सहयोग संसार की आत्माओं को हम दे सकते हैं। दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति, टेंशन, रोग और ये डिप्रेशन आदि युवकों में बढ़ते जा रहे हैं। हम चिंतन करें, हम कितना बड़ा योगदान कर सकते हैं संसार को, क्योंकि हम पूर्वज हैं। एक और महावाक्य जो मैं बहुत सुनाता हूँ क्लासेज में, और पहले तो अपने को सुनाता हूँ, संसार में कोई ऐसा दर्पण नहीं है जिसमें भगवान दिखाई दे। तुम अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ जिसमें सभी बाप को देखें। ये सुंदर महावाक्य जो हमें जगाते हैं। ये समय है भाग्य बनाने का, अब हम स्लिप ना हो जाएं कहीं। चिंतन करें एकांत में, मुझे अच्छे से अच्छा भाग्य बनाना है, और अच्छे से अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। चिंतन में लाओ, जहाँ आप हैं, जिस परिवार में हैं, जैसा आपके पास सब कुछ है, पैसा, नौकरी, परिवार, उसी में अच्छे से अच्छा क्या भाग्य बनाया जा सकता है, इसका चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कभी भी साधारण माताएं ये ना सोचें हमारे पास पैसा ज्यादा होता तो हम अच्छा भाग्य बनाते, ये नहीं। पैसे से भाग्य नहीं बनता, पुण्यों से भाग्य बनता है। और बाबा ने रहस्य बता दिया, जब बाबा थे तो गरीब का एक रुपया साहूकारों के हजार, क्योंकि बात पैसे की नहीं, बात इसके पीछे छुपे हुए प्यार और भावना की है। भगवान को पैसा क्या करना, वो चाहे तो सारे मधुवन में हीरो की बरसात करा दे आज रात को ही, आप सब इतनी झोलियां भर लें के घर भी ले जाएं। उसके लिए ये सब कुछ नहीं है, एक संकल्प करेगा और सोने हीरे की बरसात होने लगेगी। और मैं तो कहा करता हूँ, क्योंकि ये सब समझ में आ गया है कि जब बाबा अपना कार्य पूर्ण करके वापस जाएगा तो भारत की इस धरती पर सोने हीरो की बरसात करा के ही जाएगा, अथा। चलो भाई गीत का समय हो गया, ये घड़ी पीछे रहती है, चलो ठीक है, मैं इन्हें देखता हूँ ना, दोनों में पीछे है। तो सभी आधा घंटा रोज चिंतन करेंगे और अच्छी अच्छी अपने को प्रेरणा देंगे। ओम।